पृष्ठ संख्या 223, 21। शुक्लोत्तर आलोचना में अज्ञेय का योगदान निश्चय ही महत्वपूर्ण है। तार सप्तक 1943 के प्रकाशन के बाद हिंदी कविता और समीक्षा वही नहीं रही। जिस भाव भूमि की पहचान इन कवियों ने की, उसका अभिज्ञान अज्ञेय द्वारा लिखित तार सप्तक की भूमिका कराती है। उसके बाद वाद विवाद, चर्चा परिचर्चा के क्रम में परवर्ती सप्तक संकलनों की भूमिकाएं जुड़ती गईं और हिंदी में छायावादोत्तर काव्य परिवेश का एक पूरा नक्शा इस श्रृंखला के माध्यम से तैयार होता गया। रचना का महत्व, रचना प्रक्रिया की छानबीन, रचनाकार और उसके बृहत्तर समाज के बीच होने वाली क्रिया प्रतिक्रिया में वाचिक परंपरा का योगदान, ये और ऐसे अन्य अनेक विषय समकालीन समीक्षा में अज्ञेय की चिंताधारा से प्रवाहित हुए हैं। आधुनिक साहित्य में अज्ञेय की यह भूमिका अनायास T.S. इलियट का स्मरण कराती है, जिसका काव्य और साहित्य चिंतन परस्पर सहकार की मुद्रा में अंग्रेजी साहित्य को आधुनिक युग में लाते हैं। कविता सृजनात्मकता का सघनतम रूप होने के कारण वहाँ निश्चय ही अधिक महत्वपूर्ण है, पर पुनः सर्जन के स्तर पर समीक्षात्मक निबंध भी कम महत्व के नहीं। कविता और समीक्षा का यह युग्म अपने आप में आधुनिक साहित्य की पहचान बनाता है, जहाँ अनुभव और विचार का संश्लेष कई रूपों और मात्राओं में गतिशील हुआ है। अज्ञेय की भूमिकाएं कवि दृष्टि, निबंध, त्रिशंकु, आत्मनेपद, अद्यतन और समग्र विवेचन संवत्सर, साहित्य ही नहीं रचनात्मकता और संप्रेषण मात्र की विविध समस्याओं का गहरा और सुलझा हुआ विश्लेषण प्रस्तुत करते हैं। उन्होंने अपने से पहले समकालीन और परवर्ती सभी आयुक्रम के लेखकों का सहानुभूतिपूर्ण अध्ययन किया है और यह परंपरा की सही पहचान बनाने में गुणात्मक योग दिया है। व्यवस्थित रूप से परवर्ती आलोचना लेखन रामचंद्र शुक्ल से प्रेरित और प्रभावित रहा तो यह उचित और स्वाभाविक है। इस प्रसंग में नंद दुलारे वाजपेयी के योगदान का मूल्यांकन पहले हो चुका है। अन्य आलोचकों में से कुछ ने द्विवेदी युगीन काव्य को विवेचन का विषय बनाया, कुछ ने छायावादी काव्य को। गिरिजा दत्त शुक्ल, गिरीश, महाकवि हरिओत गुप्त जी की काव्यधारा, सत्येंद्र गुप्त जी की कला और रामनाथ सुमन प्रसाद की काव्य साधना के अपनी कोटि में आरंभिक अध्ययन है, जिनका उल्लेख आचार्य शुक्ल अपने इतिहास के समालोचना और काव्य मीमांसा शीर्षक प्रकरण के अंतर्गत करते हैं। ये अध्ययन परिचयात्मक और सहानुभूतिपूर्ण है। आधुनिक काल में आकर छायावादी कवि और काव्य बड़े रचनाक्रम के अंतर्गत ठीक ही पहचाने गए, फलतः समकालीन आलोचना का ध्यान इस ओर अधिक गया। शांति प्रिय द्विवेदी, विशंभर नाथ मानव तथा गंगा प्रसाद पांडे ने छायावाद संबंधी आरंभिक विभ्रमों को दूर करने में महत्वपूर्ण योग दिया। प्रसाद, निराला, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी तथा समग्रतः छायावाद संबंधी इनके अध्ययन उल्लेखनीय हैं। इनकी सीधी सरल शैली छायावाद के आरंभिक आख्यान के लिए उपयुक्त सिद्ध होती है। सैद्धांतिक अध्ययन के क्षेत्र में लक्ष्मी नारायण सुधांशु ने कार्य किया। काव्य में अभिव्यंजनावाद, जीवन के तत्व और काव्य के सिद्धांत, इसी अनुशासन के आलोचक हैं। पृष्ठ संख्या 224, गुलाब राय तथा विश्वनाथ प्रसाद मिश्र, जिन्होंने क्रमशः पाश्चात्य तथा भारतीय काव्यशास्त्र में अधिक रुचि ली। वाजपेयी के बाद शुक्लोत्तर आलोचना के तीन मुख्य व्यक्तित्व हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र तथा राम विलास शर्मा। हजारी प्रसाद द्विवेदी में पांडित्य और सहृदयता का विलक्षण मिश्रण है। संस्कृत, प्राकृत, अपभ्रंश परंपराओं की उनकी जानकारी तब और उपयोगी हो जाती है जब वे हिंदी साहित्य के संदर्भ से जोड़कर उन्हें देखते हैं। पर आलोचक के रूप में उनके साथ बड़ी कठिनाई यह है कि अपने युग के साहित्य के साथ उनकी समझदारी और साझेदारी सीमित रही है। यह पहले ही स्पष्ट किया जा चुका है कि समालोचक के व्यक्तित्व के लिए अनिवार्य तत्व है उसकी समकालीन साहित्य में रुचि। इस कमी के कारण आचार्य द्विवेदी की छवि एक सहृदय पंडित की अधिक बनती है बजाय एक संवेदनशील आलोचक के। उनके लेखन ने दो पक्षों को विशेष रूप से समृद्ध किया है, एक तो हिंदी चिंताधारा की सहज लोक परंपरा और दूसरे उसी से जुड़ा कबीर का कवित्व। हजारी प्रसाद द्विवेदी के पहले तक दोनों हिंदी साहित्य के इतिहास में स्वीकृत तो किए जाते थे, पर जैसे कुछ छूट देने की मुद्रा में। उनके अध्ययन विशेषता कबीर और हिंदी साहित्य की भूमिका ने हिंदी साहित्य की इस विशिष्ट पृष्ठभूमि और इस विशिष्ट कवि को उनके सहज महत्व में प्रतिष्ठित किया। हिंदी साहित्य के प्रसंग में एक रोचक अंतर विरोध यह है कि मध्यकालीन साहित्य जहां अपने में उत्कृष्ट माना जाता है, वहां मध्यकालीन साहित्य दृष्टि पिछड़ी हुई और प्रतिक्रियावादी समझी जाती है। हजारी प्रसाद द्विवेदी, जिनका मुख्य कृतित्व किसी न किसी रूप में मध्यकाल से जुड़ा रहा, अपने कृतित्व में तो वर्ण्य है ही, अपने दृष्टि में भी प्रगतिशील बने रहे। यूं उन्होंने अपने ढंग से उपयुक्त अंतर विरोध का शमन किया। छोटे बड़े अनेक अंतर विरोधों को अपने में समाये रखने और शमित रखना एक असाधारण व्यक्तित्व का लक्षण है। हजारी प्रसाद द्विवेदी इस रूप में पंडित और प्रोफेसर, नए तथा पुराने, कृतिकार तथा शोधक साथ साथ थे। तब यह स्वाभाविक ही था कि उन्होंने मध्यकालीन बोध को आधुनिक दृष्टि से व्याख्यायित किया। यहाँ एक तथ्य की ओर संकेत करना अप्रासंगिक न होगा। आचार्य द्विवेदी का यूरोपीय या कि अंग्रेजी साहित्य से घनिष्ठ परिचय न था। यह बात उनके व्यक्तिगत जीवन संदर्भों से भी समझी जा सकती है और उससे अधिक उनकी पूरी समीक्षा प्रक्रिया में परिलक्षित की जा सकती है। जो बात महत्वपूर्ण है वह यह कि 20वीं सदी के भारतीय संदर्भों में अंग्रेजी से निकट परिचय न होने पर भी उनका व्यक्तित्व तो कहीं कुंठित नहीं हुआ। उनके इस आत्मविश्वास का यदि विश्लेषण किया जाए तो दिखेगा कि संस्कृत के पांडित्य और लोक जीवन में निष्ठा, इन दोनों तत्वों ने मिलकर बड़े विनम्र भाव से अंग्रेजी के ज्ञान को हिंदी साहित्य चिंतन के लिए अप्रासंगिक कर दिया है। यह जानना रोचक है कि आचार्य द्विवेदी के यहाँ पंडित शब्द का प्रयोग बहुत बार कबीर की मुद्रा में अवमानना से युक्त तो नहीं पर हल्के व्यंग्य को लिए हुए है। कुल मिलाकर पंडित और लोक के बीच उनका पक्ष बराबर लोक का है और यही उनके आत्मविश्वास का मूल स्रोत है। संस्कृत के प्रति आदर, अंग्रेजी के प्रति शालीन तटस्थता और लोक के प्रति निष्ठा तथा आत्मीयता, हजारी प्रसाद द्विवेदी का रचनात्मक व्यक्तित्व तो कुछ ऐसे अनुपात में बनता है। रामचंद्र शुक्ल जैसे संस्कृत के पसारे से आतंकित नहीं होते, हजारी प्रसाद द्विवेदी वैसे अंग्रेजी के प्रभुत्व से। दोनों हिंदी के स्वतंत्र चेता आलोचक हैं। रामचंद्र शुक्ल की आशंसा में लिखा हजारी प्रसाद द्विवेदी का यह वाक्य दोनों पृष्ठ संख्या 225 के महत्व को प्रकट कर देता है। नया लेखक उनसे डरता है, पुराना घबराता है, पंडित सिर हिलाता है। वे पुराने की गुलामी पसंद नहीं करते और नवीन की गुलामी तो उनके लिए एकदम असह्य है। भूमिका उपसंहार। रीति काव्य में रसिकता और शास्त्रीयता का योग हुआ है और आधुनिक समीक्षा में डॉक्टर नगेंद्र का व्यक्तित्व इसे अपने ढंग से प्रतिफलित करता है। उनकी शीर्ष रचना रस सिद्धांत हो तो यह स्वाभाविक है। आधुनिक काल में मैथिली शरण गुप्त और छायावादी काव्य उनके अध्ययन के प्रिय विषय रहे हैं। छायावाद के आरंभिक अध्येताओं में उनका स्थान महत्वपूर्ण है। छायावाद की तत्कालीन समीक्षा से कुछ कुछ खीजे रामचंद्र शुक्ल को सुमित्रा नंदन पंत के संबंध में लिखी हुई केवल प्रोफेसर नगेंद्र की सुमित्रा नंदन पंत पुस्तक ही ठिकाने की मिली। हिंदी साहित्य का इतिहास, गद्य साहित्य की वर्तमान गति। रीति काव्य और छायावाद के अतिरिक्त भारतीय काव्य शास्त्र की व्याख्या के संबंध में नगेंद्र ने विशेष रूप से कार्य किया है। वे काव्य से क्रमशः शास्त्र की ओर उन्मुख होते गए हैं। इस प्रवृत्ति को निर्मला जैन ने अपनी पुस्तक हिंदी आलोचना 20वीं शताब्दी में आचार्य शुक्ल की शब्दावली के सहारे भलीभांति लक्षित किया है। उनका आलोचक व्यक्तित्व क्रमशः साधनावस्था से सिद्धावस्था की ओर ही बढ़ता रहा है। अपनी आलोचना प्रक्रिया में नगेंद्र आरंभ से काव्य के प्रति शंकालु और शास्त्र को लेकर आश्वस्त रहे हैं। छायावाद की परिभाषा शीर्षक अपने आरंभिक और प्रसिद्ध निबंध में भी लिखते हैं। यह तो स्पष्ट ही है कि छायावाद का काव्य प्रथम श्रेणी का विश्व काव्य नहीं है। कुंठा की प्रेरणा प्रथम श्रेणी के काव्य को जन्म नहीं दे सकती। अपने दूसरे प्रिय क्षेत्र रीति काव्य की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का विवेचन आरंभ करते हुए इस काल की कविता को वे क्षयग्रस्त बताते हैं। रीति काव्य की भूमिका। हो सकता है अपनी आलोचकीय निष्पक्षता को प्रमाणित करने के लिए उन्होंने ऐसे कठोर वक्तव्य दिए हों, पर इससे दोनों युगों की कविता के प्रति अन्याय हुआ है। यूं रीति काव्य के वैशिष्ट्य को रेखांकित करने में उनके अध्ययन का ऐतिहासिक महत्व है। रीतिकालीन श्रृंगारिकता की व्याख्या करते हुए वे लिखते हैं, इस श्रृंगारिकता के विषय में दूसरी बात यह ज्ञातव्य है कि इसका स्वरूप प्राय सर्वत्र ही गार्हस्थिक है। वही पृष्ठ 169। यो आलोचक ने हिंदी परंपरा के अंतर्गत परिवार और गार्हस्थिक जीवन की महिमा से रीति काव्य को ठीक ही संबद्ध किया है। आलोचना के क्षेत्र में नगेंद्र के व्यक्तित्व का एक पक्ष आयोजन को लेकर है। प्राचीन भारतीय और पाश्चात्य काव्य शास्त्र के संकलन और संपादन में उनका कार्य श्याम सुंदर दास की आरंभिक व्यवस्था का स्मरण दिलाता है। राम विलास शर्मा का आलोचना कर्म हिंदी में प्रगतिवादी विचारधारा के एक मुख्य प्रवक्ता के रूप में आरंभ होता है, पर क्रमशः उनके लेखन में वाद का आग्रह हल्का होता जाता है और विवेचन प्रधान। इस आरंभिक रुझान से उनका संस्कार कुछ ऐसा बन गया कि वे किसी लेखक के विचार की जितनी अच्छी व्याख्या कर सकते हैं उतनी उसकी रचनात्मकता की नहीं। और इसी प्रवृत्ति का एक परिणाम यह हुआ कि ध्वंसात्मक आलोचना उन्हें उतनी ही प्रिय है जितनी अपने मत की स्थापना। भारतेंदु हरिश्चंद्र संबंधी अध्ययन के अंतिम अंश में शिवदान सिंह चौहान की और निराला की साहित्य साधना खंड 3 की भूमिका में जानकी वल्लभ शास्त्री की जिस मुद्रा में विराम विलास शर्मा ने आलोचना की है वह पद्म सिंह शर्मा की संहार शैली का स्मरण दिलाती है। और तब लगता है कि हिंदी के इन दोनों तेजस्वी पृष्ठ संख्या 226 आलोचकों के भीतर कहीं एक प्रचारक का तत्व है जो इन्हें जोड़ता है। अपनी रुचि और तैयारी के अनुकूल रामविलास शर्मा का श्रेष्ठतम अध्ययन महावीर प्रसाद द्विवेदी को लेकर है और इस बात का भी श्रेय उन्हें जाता है कि भारतेंदु के कृतित्व को वे अनेक विभ्रमों से खींचकर केंद्र में लाए। कबीर की तरह ही भारतेंदु भी बहुत समय तक लेखक कम समाज सुधारक अधिक माने जाते थे। उन्हें आधुनिक साहित्य चेतना के केंद्र में स्थापित करना रामविलास का काम है। वैसे ही जैसे जायसी और कबीर के कवि रूप का संधान रामचंद्र शुक्ल तथा हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किया, इसी संदर्भ में यह भी स्पष्ट है कि निराला की साहित्य साधना जो लेखक का कई दृष्टियों में सबसे बड़ा काम है, अपने जीवनी में जितना पुष्ट है आलोचना में उतना ही हल्का। और सबसे अच्छा खंड तो तीसरा है, जिसमें निराला के पत्रों का संग्रह है, जिसकी भूमिका के एकदम आरंभ में रामविलास शर्मा ने स्वयं लिखा है। एक तरह से तीनों खंडों में यह सबसे महत्वपूर्ण है। इसमें मेरा लेखन कम से कम है, दूसरों का अधिक से अधिक। भारतेंदु, महावीर प्रसाद द्विवेदी, निराला, इन तीनों लेखकों के माध्यम से रामविलास शर्मा ने हिंदी नवजागरण का बड़ा स्पष्ट और स्वच्छ नक्शा तैयार किया है। महावीर प्रसाद द्विवेदी और हिंदी नवजागरण की भूमिका में उनका रेखांकन इस प्रकार है। गदर सन 57 का स्वाधीनता संग्राम हिंदी प्रदेश के नवजागरण की पहली मंजिल है। दूसरी मंजिल भारतेंदु हरिश्चंद्र का युग है। हिंदी नवजागरण का तीसरा चरण महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनके सहयोगियों का कार्यकाल है। हिंदी नवजागरण के संदर्भ में निराला का यह लेखन महावीर प्रसाद द्विवेदी के ही कार्य की अगली कड़ी है। इस प्रसंग में लेखक ने बड़ी सावधानी के साथ यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतेंदु युग का जागरण हिंदू पुनरुत्थान नहीं है। भारतेंदु के बलिया व्याख्यान का यह अंश उन्होंने उद्धृत किया है। इस महामंत्र का जप करो, जो हिंदुस्तान में रहे, चाहे किसी रंग किसी जाति का क्यों न हो, वह हिंदू है। हिंदू की सहायता करो। बंगाली, मराठा, पंजाबी, मद्रासी, वैदिक, जैन, ब्रह्म, मुसलमान, सब एक का हाथ एक पकड़ो। भारतेंदु युग, पृष्ठ 42। हिंदू की इस व्याख्या में भारतेंदु का अंतर बंगला साहित्य में पुनर्जागरण के अग्रदूत बंकिम बाबू की व्यंजना से सीताराम उपन्यास हिंदू को हिंदू न बचाएगा तो कौन बचाएगा स्पष्ट समझा जा सकता है। स्वदेशी की भावना और राष्ट्र की धर्म निरपेक्ष परिकल्पना में भारतेंदु का चिंतन अग्रगामी कहा जाएगा। वे आधुनिक संविधान की इन मान्यताओं को बहुत पहले से पूर्वाश्रित करते दिखाई देते हैं। इस व्यापक भावभूमि के पीछे भारतेंदु की गहरी हिंदू आस्था को रामविलास स्पष्ट नहीं करते। भारतेंदु ऐसे नए प्रकार के भक्त थे जो समकालीन राजनीति पर पूरी दृष्टि रखते थे और उनकी रचना इस पूरी स्थिति में से निष्पन्न होती है। भारतेंदु या कि निराला के कृतित्व में व्यक्तित्व की बात यहाँ छोड़ दें, व्यापक आस्तिक हिंदू पक्ष की उपेक्षा उन रचनाकारों के संपूर्ण स्वरूप को समझने में हमेशा बाधक होगी। रामविलास शर्मा इन दोनों कृतिकारों की समीक्षा में इसे एक महत्वपूर्ण बिंदु पर ऊने पड़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय आग्रह राष्ट्रीय और जातीय मानस की समझ में आड़े आते हैं और विडंबना यह है कि इन राष्ट्रीय और जातीय पक्षों पर हिंदी संवेदना की बनावट पर समीक्षक बल बराबर देता रहा है। भारतेंदु और निराला के विचारों को पकड़ने में रामविलास शर्मा की जैसी प्रखरता है, वैसी उनके संस्कारों को समझने में संवेदनशीलता नहीं है। महावीर प्रसाद द्विवेदी इस स्थिति में कवि और रचनाकार नहीं है, इसलिए उनके व्यक्तित्व को समग्रता ग्रहण करने में आलोचक को पूरी सफलता मिली है। पर पृष्ठ संख्या 227 भारतेंदु और निराला के लिए राम और कृष्ण निरय प्रतीक या मिथ नहीं है, वे उनकी आस्था के अनिवार्य अंग हैं। इस एक तथ्य का सामना करने में उसे कठिनाई होती है। यह ठीक है कि ये रचनाकार श्री चंद्रावली या कि राम की शक्ति पूजा के माध्यम से कृष्ण या राम को इष्ट देव के रूप में प्रचारित नहीं करना चाहते, वे उनके बीच से यथार्थ की एक विराट परिकल्पना प्रस्तावित करते हैं। भारतेंदु जब कहते हैं जहाँ देखो वहाँ मौजूद मेरा कृष्ण प्यारा है, स्फुट कविताएं, या निराला जिधर देखिए श्याम विराजे गीत गुंज, तो उनकी यही परिकल्पना हमारे सामने आती है। पर भारतेंदु और निराला की एक समरस छवि बनाने में कठिनाई आती है जब हम पाते हैं कि उनकी तन्मयता और आश्वस्ति के साथ उस बेचैनी का मेल कैसे बैठे जिसे वे यह कहकर व्यक्त करते हैं, धन विदेश चली जात तऊ जिये होत न चंचल, जड़ समान वह रहत अकिल हत रचि न सकत कल प्रबोधनी। जल्द जल्द पैर बढ़ाओ, आओ आओ, आज अमीरों की हवेली किसानों की होगी पाठशाला, धोबी पासी चमार तेली खोलेंगे अंधेरे का ताला, बेला। यहाँ ध्यान देने की बात यह भी है कि दोनों कवियों की तन्मयता एक प्रकार की है, बेचैनी अलग अलग परिस्थितियों की अलग अलग। एक के लिए विदेशी शोषण की समस्या प्रधान है, दूसरे के लिए समाज में असमान वितरण की। कबीर, सूर, तुलसी, जायसी से लेकर भारतेंदु, प्रसाद, निराला जैसे बड़े लेखकों के कृतित्व में ऐसे अनेक अंश मिलेंगे जिनका परस्पर तालमेल बैठाना कठिन है। यद्यपि वे इन अंतर विरोधों को अपने भीतर अमरीकी कवि वॉल्ट व्हिटमैन की शब्दावली में समोए हुए हैं। सामान्यतः समीक्षक अपने अपने मत के अनुकूल उदाहरण देकर अपने पक्ष को सिद्ध करने की चिंता में लगे दिखते हैं, पर बड़े आलोचक का दायित्व है कि वह इन अंतर विरोधों पर पर्दा न डाले, उनको समझे और रचनाकार के व्यक्तित्व में उनकी संगति या कि असंगति स्पष्ट करे। अपनी इन सीमाओं के बावजूद रामविलास शर्मा ने आचार्य शुक्ल की आलोचना परंपरा को समृद्ध किया है, इसमें संदेह नहीं। यह समृद्धि कहीं अधिक होती यदि आलोचक ने अपने संहारक पक्ष के बजाय सृजनात्मक पक्ष को संवर्धित किया होता। यद्यपि बाद के ग्रंथों और भूमिकाओं में लोक जागरण और हिंदी साहित्य 1985, इससे पहले नई कविता और अस्तित्ववाद में हजारी प्रसाद द्विवेदी और नामवर सिंह पर जैसे प्रहार उसने किए हैं, उससे यह संभावना कम ही होती लगती है। रामविलास के अपने हिसाब से तो यदि गुरु शिष्य संहार के बाद भी हिंदी साहित्य में कहीं कुछ बचे रह जाते हैं तो उनका पुनर्जन्म ही माना जाना चाहिए। अपने आरंभिक प्रगतिवादी दिनों में रामविलास शर्मा के साथ साथ शिवदान सिंह चौहान ने प्रगतिशील आंदोलन की सैद्धांतिक पृष्ठभूमि को स्पष्ट करने में महत्वपूर्ण योग दिया था। यद्यपि जैसा संकेत किया गया, कई मुद्दों पर दोनों आलोचकों के बीच तीव्र मतभेद भी रहा। चौहान को इस बात का श्रेय है कि उन्होंने हिंदी में आलोचना की एक उत्कृष्ट पत्रिका संस्थापित की, आलोचना 1951, और अपने अपेक्षा संक्षिप्त संपादन काल में उसका स्तर बराबर ऊंचा बनाए रखा। इस त्रैमासिक ने हिंदी आलोचना को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है, यद्यपि इस बीच वह कई तरह के संपादकीय विवेक से गुजरी है। शिवदान सिंह चौहान के बाद इस पत्रिका का दायित्व एक संपादकीय मंडल ने लिया, जिसके सदस्य थे धर्मवीर भारती, रघुवंश, ब्रजेश्वर वर्मा, विजय देव नारायण शाही। कुछ दिनों बाद फिर इसके नए संपादक हुए नंद दुलारे वाजपेयी और अब है नामवर सिंह, जो इस पत्रिका के साथ सबसे लंबी अवधि से जुड़े हैं। सभी दौर के संपादकों ने पत्रिका के कुछ महत्वपूर्ण विशेषांक प्रकाशित किए हैं।